प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार, मैं सत्यवीर गिरि, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक, परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 3 तारापुर से। आज के इस दूरस्थ शिक्षण कार्यक्रम में कक्षा 7वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 में संकलित पाठ खान पान की बदलती तस्वीर लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम खान पान की बदलती तस्वीर नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। इसके लेखक श्री प्रयाग शुक्ल जी हैं। विद्यार्थियों, इस पाठ में लेखक प्रयाग शुक्ल जी खान पान के बदलते हुए परिवेश से काफ़ी चिंतित हैं। इसी समस्या को उजागर करते हुए उन्होंने यह पाठ लिखा है और इस पाठ में उन्होंने खान पान के बदलते हुए स्वरूप का विस्तृत वर्णन किया है। लेखक को लगता है कि इन पिछले 15 से 20 सालों में खान पान में काफ़ी बदलाव आया है। जहां हम अपने स्थानीय व्यंजनों को भूलते जा रहे हैं, वहीं कहीं ना कहीं पश्चिमी सभ्यता के व्यंजनों को अपनाते जा रहे हैं। आइए विस्तार से इस पाठ के बारे में चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम मैं पाठ के सारांश के साथ इसके अर्थ को आपके समक्ष रखने का प्रयास कर रहा हूँ। इस पाठ में लेखक प्रयाग शुक्ल जी ने खान पान के बदलते हुए स्वरूप के बारे में बताने की कोशिश की है। लेखक कहना चाहता है कि पिछले 10 से 15 वर्षों में खान पान की संस्कृति में काफ़ी बदलाव आया है। दक्षिण भारत व उत्तर भारत के भोजन में काफ़ी हद तक पूरे देश में अपना स्थान बना चुके हैं। जहां दक्षिण भारत के जो प्रसिद्ध व्यंजन हैं जैसे इडली, डोसा, मेंदू वड़ा इत्यादि, आज हम उन्हें उत्तर भारत के भी हर एक कोने में देख सकते हैं और खा सकते हैं। वहीं उत्तर भारत के जो प्रसिद्ध व्यंजन हैं वह कहीं ना कहीं पूरे भारत में आपको आसानी से मिल सकते हैं। उत्तर भारत में जो ढाबे पर आपको रोटी, दाल, साग मिलती थी, आज वह हमें पूरे देश में देखने को मिलती है। देश के किसी भी कोने में हम चले जाएं तो कहीं ना कहीं वहाँ पर हमें ढाबा देखने को मिल ही जाता है। आपने भी अपने माता पिता के साथ कभी कोई यात्रा की होगी तो आपने देखा होगा कि हाईवे रोड के किनारे काफ़ी सारे ढाबे, काफ़ी सारे होटल्स बन चुके हैं। यदि बात की जाए फास्ट फूड की तो इससे कोई अछूता नहीं रहा है। यदि आपकी बात की जाए तो मुझे लगता है शायद आप लोग भी काफ़ी फास्ट फूड खाना पसंद करते होंगे। फास्ट फूड में जैसे बर्गर, नूडल्स इत्यादि आप लोग मुझे लगता है काफ़ी खाते होंगे और हर जगह आसानी से उपलब्ध भी हो जाते हैं। वहीं यदि बात की जाए आलू चिप्स की, गुजराती ढोकले की, गाठिया की, बंगाली मिठाइयों की, तो पूरे देश में ये आपको समान रूप से देखने को मिल जाती हैं। सभी प्रदेशों के व्यंजन सभी स्थानों पर मिलने लगे हैं। जबकि पहले क्या होता था, पहले कुछ खास व्यंजन कुछ खास जगह की पहचान होते थे। जैसे आप लोगों ने सुना होगा आगरे का पेठा, मथुरा के पेड़े, ये कुछ खास व्यंजन जो खास जगह के नाम से प्रसिद्ध थे, आज हर एक जगह वे अवेलेबल हैं, उपस्थित हैं, हम उन्हें कहीं भी प्राप्त कर सकते हैं। बात की जाए यदि ब्रेड की, तो जो ब्रेड अंग्रेजों के समय में अमीरों के घरों में केवल देखने को मिलती थी, जो पैसे वाले लोग थे, अमीर लोग थे, उनके घरों में देखने को मिलती थी, आज उस ब्रेड से कोई भी घर अछूता नहीं रहा है। हर एक घर में आपको ब्रेड देखने को मिल जाएगी। कुछ लोग ब्रेड को सेक करके खाते हैं, कुछ उसे तल करके खाते हैं। यदि बात करें खान पान की बदलती संस्कृति से युवा वर्ग कितना प्रभावित हुआ है, तो युवा वर्ग देखिए, बदली संस्कृति के खान पान से जो नई पीढ़ी है वह भी काफी प्रभावित हुई है। यह वर्ग पहले केवल स्थानीय व्यंजनों के बारे में कम जानता था, लेकिन अब यह वर्ग नए व्यंजनों के बारे में अधिक जानता है। जो नए नए व्यंजन हैं, जहाँ जो लोग बूढ़े हो चुके हैं, वृद्ध हो चुके हैं, वे अभी उतने व्यंजनों के बारे में नहीं जानते जितने कि हमारा आज का युवा वर्ग नए नए व्यंजनों के बारे में जानता है। क्योंकि आज का युवा देश के हर एक कोने में घूमता है, हर एक क्षेत्र में भ्रमण करता है और नए नए व्यंजनों से वह परिचित होता है। और यदि बात करें स्थानीय व्यंजनों की, तो जो स्थानीय व्यंजन थे कहीं ना कहीं वह आज कम होते जा रहे हैं, उनकी संख्या लगातार घटती जा रही है। एग्जाम्पल के रूप में, उदाहरण के रूप में हम छोले कुलचे देख सकते हैं, मुंबई की पाव भाजी देख सकते हैं। जो मुंबई की पाव भाजी इतनी ज़्यादा प्रसिद्ध थी, आज कहीं ना कहीं उसका एक सिमटा हुआ रूप हमें दिखाई देता है, एक संकुचित क्षेत्र में ही वह हमें दिखाई देती है। और यदि दिल्ली के छोले कुलचे की बात की जाए, तो मुझे लगता है कि छोले कुलचे शायद एक सीमित क्षेत्र तक रह गए हैं, बहुत सिमटते आ रहे हैं और कम लोग ही अब इनको पसंद करते हैं। जी विद्यार्थियों, अब बात करते हैं जो खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता में, जो उनकी क्वालिटी है उसमें क्या अंतर आया है। तो यदि बात की जाए गुणवत्ता की, तो आज के इस नए दौर में भले ही कुछ मशहूर चीज़ें अपना स्थान बना चुकी हैं, जैसे मथुरा के पेड़े, आगरे का पेठा, नमकीन, लेकिन उनकी गुणवत्ता यानी उनकी जो क्वालिटी है वह अब उतनी अच्छी नहीं रही जितनी कि पहले मिलती थी। और दूसरे, लोगों के पास समय भी बहुत कम है, तो उस समय के कारण दूसरा ऋतु जो मौसम परिवर्तन होता है, उस मौसम परिवर्तन के कारण भी अब व्यंजनों में वह स्वाद नहीं मिलता जो स्वाद आप जानते होंगे। यदि आप लोग उत्तर भारत के कभी मथुरा वृंदावन गए होंगे, तो वहाँ पर वृंदावन में आपने लस्सी पी होगी, मथुरा के पेड़े खाए होंगे, आगरे का पेठा खाया होगा। तो यदि आप लोग उनका टेस्ट अपने पिताजी माताजी से पूछें कि पहले टेस्ट क्या था और आज के टेस्ट में कितना अंतर आया है, तो वह आपको बता पाएंगे कि पहले से आज की जो गुणवत्ता है, जो क्वालिटी है, वो कहीं ना कहीं कम हुई है। यदि खान पान की बात की जाए, तो आजकल हर व्यक्ति अपने सुविधा के अनुसार खान पान पसंद करता है। वैसे तो हमारे देश में काफ़ी महंगाई हो चुकी है, और उस महंगाई के कारण लोग बहुत सारी चीज़ों को नहीं खा पाते। जैसे यदि हम ड्राई फ्रूट्स, जो सूखे मेवे हैं, उनकी बात करें, तो आज हर घर में यह उपलब्ध नहीं है। कहीं ना कहीं जो गरीब परिवार हैं, जो निम्न परिवार हैं, जो मध्यम परिवार हैं, उनके घरों में बड़ी मुश्किल से ड्राई फ्रूट्स देखने को मिलते हैं, और उनका प्रयोग मिठाइयों में भी बहुत कम देखने को मिलता है। महंगाई के कारण, क्योंकि आप जानते हैं कि ड्राई फ्रूट्स आज के समय में कितने महंगे हो चुके हैं, जो कि पहले हर मिठाइयों में, हर तरह के व्यंजनों में ये हमें देखने को मिलते थे, लेकिन अब वह उतनी क्वालिटी में नहीं रहे हैं या उतनी उपलब्धता में नहीं रह पाए हैं। एक तो इनकी महंगाई के कारण, और दूसरा इनके मूल्य, इनके दाम, इनकी जो कीमत है वह अधिक होने के कारण। हम देखते हैं कि आजकल खान पान की एक मिश्रित संस्कृति चल गई है। हमारे देश में कई सारे विदेशी व्यंजन उपलब्ध हैं, और आजकल हम उनको अपने देसी व्यंजनों के साथ खाना पसंद करते हैं। यदि देखें तो ये कहीं ना कहीं एक राष्ट्रीय एकता को भी बढ़ावा देता है। जैसे हमारे देश के जो व्यंजन हैं, जो कि एक खास जगह प्रसिद्ध होते थे, फेमस होते थे, आज वह हर जगह मिल जाते हैं, तो हम लोग उन मिठाइयों को खाते भी हैं, उन व्यंजनों को खाते भी हैं और उनसे परिचित भी होते हैं। साथ ही साथ वहाँ के वातावरण की ये मिठाई बनाई कैसे जाती है, यह व्यंजन बनाया कैसे जाता है, इन सारी चीज़ों से भी प्रभावित होते हैं। तो यदि जैसे हम लोग व्यंजनों से प्रभावित होते हैं, चाहे वो बंगला मिठाई हो, चाहे वो मथुरा की पेड़े हो, आगरा का पेठा हो, तो इन व्यंजनों के साथ साथ यदि हम लोग इनकी भाषा, इनकी बोली, यहाँ की वेशभूषा को भी अपनाएं, तो कहीं ना कहीं एक राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा भी मिलता है। अब बात करते हैं कि जो हमारे स्थानीय व्यंजन हैं, जैसे हमने बात की मथुरा के पेड़े, मुंबई की पाव भाजी या फिर बड़ा पाव, तो इनमें इनका इनके लिए क्या नुकसान हुआ है, तो इनकी कुछ दुर्गति यानी इनके कुछ नुकसान भी हुए हैं। आधुनिकता की इस दुनिया की ओर बढ़ने के साथ साथ हमें अपने स्थानीय व्यंजनों को भी बढ़ावा देना चाहिए। हम लोग विदेशी व्यंजनों को अपनाते जा रहे हैं लेकिन अपने ही व्यंजनों को भूलते जा रहे हैं। ध्यान रखिए, यदि हम लोग अपने देश में निर्मित व्यंजनों को भूल जाएंगे तो फिर इनका कोई भी मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए हम विदेशी व्यंजनों को तो अपनाएं, साथ ही साथ जो हमारे देश में निर्मित व्यंजन हैं, जो एक जगह के लिए फेमस हैं, एक जगह के नाम से फेमस हैं, प्रसिद्ध हैं, उनको भी नहीं भूलें, उनको भी हमें बढ़ावा देना चाहिए। कई व्यंजन जो आम रूप में मिला करते थे, जैसे गली मोहल्ले में कई तरह के हमें समोसे देखने को मिलते थे, जलेबियाँ देखने को मिलती थीं, उसके अलावा पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ जो जगह जगह ठेलों पर, जगह जगह हलवाइयों की दुकानों पर मिलती थीं, आज कहीं ना कहीं वो विलुप्त होती आ रही हैं, आज कहीं ना कहीं खत्म होती आ रही हैं, बहुत कम देखने को मिलती हैं। तो इसलिए हमें अपने स्थानीय व्यंजन हैं उनको नहीं भूलना चाहिए। पश्चिम देशों से जो पदार्थ आए हैं, कहीं ना कहीं वो जो व्यंजन है कहीं ना कहीं हमारी सेहत पर भी असर करते हैं। स्वास्थ्य में उतने अच्छे, स्वास्थ्य के लिए उतने अच्छे नहीं हैं, स्वाद में भी उतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन फिर भी लोग उनको अपनाते जा रहे हैं। ठीक है, उनको भी अपनाना चाहिए, लेकिन साथ के साथ अपने देश में निर्मित जो व्यंजन हैं उनको भी नहीं भूलना चाहिए। विद्यार्थियों, आगे जो लेखक हैं वे बताना चाह रहे हैं कि जो खान पान की जो मिश्रित संस्कृति बनी है, इससे कहीं ना कहीं जो हमारी स्थानीय जो व्यंजन थे उनका स्वाद समाप्त होता जा रहा है। तो खान पान की जो मिश्रित संस्कृति बनी है, इनसे बहुत सारी चीज़ों का जो वास्तविक स्वाद था, जो उसका रियल टेस्ट था, वह कहीं ना कहीं समाप्त होता जा रहा है। कई बार आप लोगों ने भी देखा होगा, जो शादी पार्टी होती हैं तो लोग एक ही थाली में बहुत सारा भोजन रख लेते हैं, उसी में चावल, उसी में छोले, उसी में दाल, उसी में मीठा, उसी में आइसक्रीम, तरह तरह की व्यंजनों को एक ही थाली में रख लेते हैं और एक साथ खाते हैं। तो इससे ना तो जो व्यंजन है, या जैसे मान लीजिए छोले का हमें टेस्ट लेना है, जो छोले का सच में टेस्ट क्या होना चाहिए, उस टेस्ट से हम लोग अनभिज्ञ ही रह जाते हैं, अनजान ही रह जाते हैं, केवल हम सभी व्यंजनों को मिक्स करके खाना चाहते हैं। तो इससे जो व्यंजन है, जो तरह तरह के भोजन हैं, उनका रियल में जो टेस्ट है, जो स्वाद है, वह हमें नहीं मिल पाता है। तो कहीं ना कहीं जो आजकल खान पान की मिश्रित संस्कृति जो बनी है, इससे जो स्थानीय व्यंजन है उनका वास्तविक स्वाद समाप्त होता जा रहा है। तो प्रयाग शुक्ल जी इस पाठ के माध्यम से यही बताना चाह रहे हैं और इस चिंता की ओर अपना ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि इस खान पान की संस्कृति में आजकल बहुत बदलाव आया है, हमें उस बदलाव को भी स्वीकार करना चाहिए, साथ ही साथ हमारे जो स्थानीय व्यंजन हैं, हमारे यहाँ पर जो बनने वाले तरह तरह के पदार्थ हैं, उनको भी नहीं भूलना चाहिए, उनको भी बढ़ावा देना चाहिए। और जो मिश्रित संस्कृति है, जो खाने पीने की जो मिश्रित संस्कृति बन पड़ी है, तो कहीं ना कहीं हर एक चीज़ का अपना एक टेस्ट होता है, अपना एक स्वाद होता है, उस स्वाद को भी प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। मुझे आशा है कि आप लोगों को इस पाठ को पढ़ते हुए आपके क्षेत्र में बनने वाली प्रसिद्ध मिठाइयाँ, आपके क्षेत्र में बनने वाले प्रसिद्ध व्यंजन याद आ रहे होंगे, तो अवश्य ही उन व्यंजनों को आप बढ़ावा दें। और लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उनसे परिचित कराएं और अपने यहाँ के जो प्रसिद्ध व्यंजन हैं उनको और भी ज़्यादा प्रसिद्धि दिलाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।